वमिनन नासी, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, बड़ी हसरत का अंदाज़ा है। मैयत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाही अंदादन, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीक बना लेते हैं, छोड़कर भी कह ले और अल्लाह के साथ एक ही बराबर है। कोई अल्लाह को मानते हुए किसी दूसरे को शरीक बनाए, या अल्लाह को ना माने और दूसरे को मना ले, सेम बात है। कैसे शरीक बना लेते हैं, ये कौन सा शिर्क है? युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो इनसे ऐसी मोहब्बत करने लगते हैं जिससे मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए। जबकि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। होगा क्या ऐसे मुशरिकों के साथ, इस वक्त आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? कुफारों के ऊपर। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, और काश वो लोग देखें जिन्होंने जुल्म किया। लिख लीजिए अल्लज़ीना ज़लमू के नीचे अल्लज़ीना अशरकू, शिर्क के लिए यहाँ लफ्ज़ जुल्म आया, जैसा कि सूरत लुकमान में भी आता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। क्या होगा उनके साथ? बड़े गौर से देखने वाली आयत है, वरना आप इधर उधर हो जाएंगे। ठीक है, इस जरउन अल अज़ाब, जब वो अज़ाब को देखेंगे, और उस वक्त उनकी ज़ुबान पे क्या बात होगी, और उनके दिल किस बात की गवाही देंगे कि अन्नल कुव्वत लिल्लाही जमीया, बेशक कुव्वत सारी की सारी अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में तो उन्होंने दूसरों के हाथों में बांटी हुई थी ना, अब अल्लाह के हाथ में होने का यकीन आ गया, और साथ ही साथ दूसरा एहसास उनको क्या होगा, वो अन्नल्लाह शदीदुल अजाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। कुव्वत भी उसकी, अजाब भी उसके हाथ में है। ये कब होगा? क्यामत के दिन होगा। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के हक दूसरों को दे दिए? यहाँ से शिर्क की बात है। पीछे अल्लाह का मुकाम था, इलाहु वाहिद, अल्लाह ये नहीं चाहता कि मुझे मानो, अल्लाह कहता सिर्फ मुझे मानो। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि मुझसे भी प्यार करो, अल्लाह ताला ये कहता है कि मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करो। लेकिन कुछ लोग जो जाहिर परस्त होते हैं, यहाँ वही बात जो 2 दिन पहले के सबक में थी, कि कुछ लोग मज़ाहिर परस्त हो जाते हैं, मुज़ाहिरों को, शोभतों को वो करामतें समझने लगते हैं। किसी ने उनको कोई छोटी सी करामत दिखाई तो उसके पीछे चले गए, किसी पीर साहब ने मुर्गा जिंदा करके दिखा दिया, कह दिया बस ये पीर साहब मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ देखा 2 दिन तक, कहा बस ये पीर साहब बन गए। यहाँ असल में उन लोगों की बात है कि जो ना नजर आने वाली जात को छोड़कर नजर आने वाली छोटी छोटी चीजों में खो जाते हैं, और वो अल्लाह के शरीक बनाते हैं। शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं, यहाँ कौन सी किस्म है? शिर्क फिल महब्बा, लिख लें मोहब्बत लफ्ज है ना, उसको अरबी में महब्बा, मीम पे जबर डाल दें, आखिर में ताए मरब होता, शिर्क फिल महब्बा। ये सिर्फ ये शिर्क है, इसमें भी कोई कब्रों के ऊपर सजदों और उन दूसरी चीजों की बात नहीं है, कि कुछ लोग जो हैं वो जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए इतनी मोहब्बत वो दूसरों से करने लग जाते हैं। कैसे? पहली बात तो आप समझ लीजिए लफ्ज़ मोहब्बत को, थोड़ा सा इशारा मैंने दे दिया था लफ्ज़ी वजाहत में, हुब हब हब्बा, हब हब्बा दाना, दाना जमीन में जाता है, जो दाना जमीन में जाएगा वही पौधा उगेगा, राइट? आपको शक पड़ जाए ना ये बीज कैसे हैं, कुछ लोग खाते हैं ना बीज भी, पता नहीं चल रहा खरबूजे के हैं, तरबूज के हैं, कद्दू के हैं, क्या करें, थोड़ा सा इंतजार करें, उस बीज को किसी भी गीली मट्टी में दबा दें 2 दिन 4 दिन, थोड़े दिन बाद उसमें से एक छोटी सी कोंपल निकलेगी, आपको पता चल जाएगा कि ये ऑरेंज का बीज था, कि लेमन का बीज था, कि संतरे का था, कि ग्रेप फ्रूट का था। जिस तरह बीज मट्टी में दबता है तो उसमें से वही निकलता है, बीज को गलती नहीं लगती, किसान को गलती लग सकती है। एक ही जगह 4 6 7 किस्म के बीज मिक्स हो जाएं, किसान को नहीं मिल रहे, बस एक ही काम है, जाके उसको मट्टी में छुपा दो, मट्टी झूठ नहीं बोलेगी, वो बिल्कुल वही पौधे लेकर आएगी। अल्लाह ताला कहते हैं इसी तरह जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज आता है तो उसमें से इताअत के पौधे उगते हैं, सबमिशन के, कुर्बानियों के, अल्लाह के लिए प्यार, अल्लाह के लिए जीना। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व मवाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और इस आयत का पीछे बड़ा गहरा रब्त है। बस लोग एक धोखा देते हैं, कहते हैं अल्लाह से प्यार तो बड़ा है, ये लग बात है, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, झूठ बोलते हैं। ठीक, कैसे हो सकता है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डले और बंदा अल्लाह के आगे झुकना ना चाहे, अल्लाह के आगे टूटना ना चाहे। फुलां बहुत अच्छे अखलाक के हैं, बस ये हैं कि रोज़ा नहीं रखते। ये नहीं हो सकता। आपको ये मजमून सूरह बकरा के पहले लेसन में भी समझाया था कि यू मैनू ना बिल गैब, दिल के अंदर एक ईमान का बीज डला। अमली इजहार युकीमुत सलात, नमाज की सूरत में अल्लाह से ताल्लुक जुड़ता है, और उसके बाद मिम्मा रज़कना हम युनफिकून, फिर अल्लाह के बंदों से बंदा प्यारा होता है। पार्शली कोई मुसलमान नहीं रह सकता, दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, नमाज रोज़ा करते रहे, निफाक है। अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल आपके पास है। मस्जिदों में नमाज पढ़ता था, जिहाद तक में जाता था, ये अलग बात है कि वहाँ जाके फितने ही फैलाए, जाता तो था ना बेचारा, लेकिन दिल में बीज नहीं था अल्लाह की मोहब्बत का। और सिर्फ दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज है लेकिन ज़ाहरी इताअत का इनकार है, तो अबू जहल है, जो आके खुद कहा करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा दीन सच्चा है, मुझे पता है तू सच्चा है, लेकिन इसलिए मुसलमान में नहीं हो रहा कि मुझे पता है कि आज मैंने कलमा पढ़ लिया तो मुझे नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, रोजे रखने पड़ेंगे, जिना छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, सूद छोड़ना पड़ेगा, और अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं। कितनी जरूरत थी अबू जहल में। आज का मुसलमान बिल्कुल उससे अपोजिट कहता है, एक दफ़ा मुसलमान हो जाओ फिर पियो, क्योंकि मुसलमान न बचोगे, नहीं बचोगे। तो मोहब्बत फातह आलम, क्या दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नोट कीजिए, अशद हुब्बल्लाह, अशद सुपरलेटिव डिग्री है, इसम तफजील की डिग्री है कि सबसे शदीद। यही मजमून है इंशाल्लाह। तब तो थोड़े लग रहा है कि करीब ही जाते जा रहे हैं ना हर चीज़ के। सूरत आल इमरान की आयत 14 में भी आएगा, ज़ुज्जिन लिन्नासि हुब्बुश्शहवात मिनन्निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल्फिद्दा। ये सब कुछ बता के कहा, आओ तुम्हें मैं इससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ, और वो क्या करे, रिदवान मिनल्लाहि। तो अल्लाह क्या चाहता है कि आप अपनी माँ से प्यार करें, बाप से करें, शौहर से करें, बेटों से करें, दोस्तों से करें, आप नेकियों से प्यार करें, सब से करें, लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, मोहब्बत सबसे शदीद अल्लाह से। अमूमन मोहब्बत क्यों की जाती है, ज़रा हल्का सा जहन को खोल फटक लें, किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है? नंबर एक, उससे हमारी ज़रूरत पूरी होती है। बचपन में जो बच्चे की मोहब्बत होती है ना माँ से, वो ज़रूरत की बुनियाद पर होती है। उसको पता है जब मैं रोता हूँ ये औरत ही आती है, जब मैं प्यासा हूँ भूखा हूँ यही माँ अपना दूध आगे कर देती है, जब गीला होता हूँ यही औरत आके उठाती है। इसीलिए हम फील करेंगे कि बच्चे शुरू में किसी डे केयर में आते हैं तो बहुत रोते हैं, कुछ दिन के बाद उनको अपनी डे केयर जो इंचार्ज है उससे ज़्यादा प्यार हो जाता है। वजह क्या है कि वो उसकी ज़रूरत पूरी करती है। ठीक है, ज़रूरियात पूरी करने वाले से प्यार होता है, और किससे प्यार होता है? किसी की खूबसूरती की वजह से होता है, रियली होता है। अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि इन्ना अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। मिसाल है कि ज़रूरत पूरी करने में हो सकता है मैं अपने माँ बाप से प्यार है, हो सकता है मेरे माँ बाप खूबसूरत ना भी हों, काली माँ है, बेढंगी शक्ल है, बच्चों को अपनी माँ अच्छी लगती, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर हैं वो खूबसूरती की वजह से अच्छी लगती हैं। मिसाल है कि गुलाब का फूल, अगर आपको मुझे गुलाब के फूल से प्यार है तो क्यों प्यार है? क्योंकि वो खूबसूरत है, खूबसूरती को देख के दिल में आती है चीज़। अल मोहब्बा बिल ज़रूरत, ज़रूरत से किसी वजह से मोहब्बत हुई, जमाल की वजह से, और लज्जत, लज्जत से। बस आप देखिए कि खाना खूबसूरत हो ना हो, मर्चें डाली होती हैं हम लोगों ने, फ्रूट चाट में भी खाते हैं तो लज्जत मिलती है ना, टेस्ट मिलता है। चॉकलेट के खूबसूरत होते हैं काले स्याह रंग के, मुंह में डालते हैं तो खाते हैं ना। अब आप सोचिए, इसी तरह के और फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इन सारे चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों में ढूंढते हैं ना, अल्लाह की ज़ात में ये तीनों के तीनों चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह हमारी ज़रूरतें भी पूरी करता है, करता है कि नहीं करता? कोई है जो हमारी ज़रूरतें उसके बग़ैर पूरी करे? अब मैं युजीबुल मुस्तर इज़ादा हूँ, अल्लाह तो सवाल उठाते भी इसमें पारे के शुरू में, है कोई जो मुस्तर की दुआ को कबूल करे जब वो पुकारे? कोई है जो तुम्हें बहरों भर के अंधेरों से निकाले? कोई है जो तुम्हें कश्तियों से बचा के लाए? तो किसको मेरे समेत आप में से अल्लाह की ज़रूरत नहीं है, और कब नहीं है? बच्चे को तो हो सकता है दिन ब दिन माँ की ज़रूरत कम रह जाए, और एक वक्त आता है कि बच्चा बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, हाथों में नहीं आते। और आप महसूस करें आज के कल्चर को, बच्चे जब तक माँ बाप के डिपेंडेंट होते हैं उनसे डरते हैं, जो ही बच्चे इंडिपेंडेंट हो के सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पे आ जाते हैं ना, तो माँ बाप वो इख्तियार भी खो देते हैं जो उनको अच्छा बुरा कहने पे टोकते थे कल तक। कहते हैं इन्होंने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। माँ रोक सकती है बच्चे को ये 200 पाउंड का पर्स ना लेना, कहेंगे मैं खुद कमाती हूँ आपको क्या लगे। तो जो बंदा जिससे लेता है ना उससे दबता है। आज मादा परस्ती इतनी बड़ी कि हमने सोचा कि हम अब अल्लाह से भी नहीं ले सकते, हमें उसकी भी जरूरत, नो थैंक्स वी कैन डू इट। बहुत सारे इसके पहलू हैं। अल्लाह के साथ बंदे की ज़रूरतें भी हैं और अल्लाह खूबसूरत भी है। इन अल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल, अल्लाह प्यार करता है, अल्लाह बड़ा खूबसूरत है, उसके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ें। और सबसे बड़ी लज्जत जो बंदे को मिलने वाली है ना, इस दुनिया की सारी लज्जतों से बेनियाज करके क्यामत के दिन, और वो है जब बंदा अल्लाह के चेहरे का दीदार करेगा क्यामत के दिन। और ये दिन होगा जिस दिन बंदा हकीकत में अपने आप को कहेगा कि वाकई अल्लाह मैंने अपने आप को ज़ाया किया। कई दफ़ा आपको यहाँ वो प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं कि जन्नती जिस दिन अल्लाह ताला के साथ बातचीत करेंगे और अल्लाह ताला के चेहरे का दीदार उनको तो जन्नत की बाकी चीज़ों से भी बेनियाज कर देगा। अगर चाहेंगे तो आपको एंड पे फिर दिखा देंगे, लेकिन इस वक्त ये दुआ कीजिए कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डल जाए। क्यों नहीं हम अल्लाह के लिए कुर्बानी देते, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और जब कभी कोई मेरी बात करता है ना, शुरू में आप लोग कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं होता जब आप ये कहते हैं आपने हमारे लिए ये किया छोड़ा। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया ना, मेरी नज़र में आपकी कोई इतनी अहमियत है। लेकिन जिस बंदे को रब की मार्फत मिल जाती है वो चुप कैसे रहे, जिसने चख जू ली एक चीज़ दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, जब आपको अपने रब की आशनाई हो गई आप तो तड़पेंगे कि खुदा के लिए तुम भी मुझसे कुछ ले लो। आप एक अच्छा खाना खा लें, परेशान नहीं होते कि अपनी दोस्तों को भी खिलाएं। कोई एक सस्ती चीज़ बाहर आपको दिखे आप क्या कहते हैं, फोन करके पूछते हैं तुम्हारी भी ले लूं। तो आपको जब कोई चीज़ मिलती है तो आप शेयर करते हैं। तो ये इल्म, ये दीन, ये मोहब्बत अल्लाह की, ये दिल में रहती नहीं है, ये उछल उछल के पड़ती है। इसके लिए इंसान को अपने दिल को तड़पाना है। आप यहाँ आके लफ्जी तर्जमा याद करें ना करें, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, ना ये दावा है ना आपको ये कोई मंजिल है, आप टेस्ट दें ना दें, लेकिन सिर्फ यहाँ आके बैठें और अल्लाह की मोहब्बत लेके चले जाएं। ये मोहब्बत कल आपके पाँव पकड़ेगी। क्यों नहीं उठते आपके बच्चे फजर की नमाज के लिए, कभी आपने सोचा? क्यों चले जाते हैं टेनिस खेलने के लिए 5 बजे सुबह और 4 बजे का अलार्म लगा लेते हैं वीकेंड्स पे? क्योंकि मोहब्बत है, और अल्लाह से भी मोहब्बत नहीं है। जोड़े औलादों को अल्लाह से, जोड़े शोहरों को अल्लाह से, फिर देखिए नाफरमानियाँ छुटती हैं कि नहीं। जोड़े बीवियों को कुरान से, फिर देखें कि उनको अल्लाह की मोहब्बत मिलती है कि नहीं। और अगर मोहब्बत ना मिले तो दुआ मांगें। अल्लाह तो इतना प्यार करता है, उसने अपनी मोहब्बत मांगना भी सिखा दिया मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। बड़ी खूबसूरत आपकी दुआ थी कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करती हूँ, वहुब्ब मैं युहिब्बु का, और उसकी मोहब्बत जो तुझसे मोहब्बत करे, वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और उन कामों की मोहब्बत जो तेरी मोहब्बत तक पहुँचाए। सोच के देखिए, अल्लाहुम्मा जल हुब्बक अहब्ब इलैया, ए अल्लाह बना दे अपनी मोहब्बत को मेरे लिए सबसे प्यारी, मिन नफ्सी, सबसे ज्यादा मोहब्बत हम करते हैं, अना रब्बुकुम अलाला। फिरौन ने एक दफ़ा कहा था अना रब्बुकुम अलाला, हमारा नफ्स दिन में 100 दफ़ा कहता होगा अना रब्बुकुम अलाला। तो नबी सल्लम ने जब दुआ मांगी तो सबसे पहले कहा मिन नफ्सी, अल्लाह मुझे अपने नफ्स से ज्यादा तेरी जात से प्यार हो जाए, व माली मुझे अपने माल से प्यार जितना उससे तेरे से हो। आज कहते हैं डॉलर से प्यार है, पाउंड से प्यार है, क्रोन से प्यार है, हम माल के पीछे भागते हैं, जिसके पीछे भागेंगे उससे प्यार है। माबूद होती वो चीज़ है जो गोल है, जिसके पीछे आप दिन रात भागते हैं वही आपका माबूद है। एक दिन की अपनी रूटीन ढूंढ के देख लें किसके पीछे भागती हूँ। किसी का माबूद उसका घर, किसी का माबूद उसका खाना पकाना, किसी का किचन, किसी की शॉपिंग, किसी का माल, किसी के कपड़े, किसी का अपने आप को स्लिम करने के लिए घंटों मशीनों में बैठना, अपने माबूद ढूंढे होते। और इसके बरक्स वाहली वमे माइल बारे, अल्लाह मुझे जितनी अपने घर वालों से मोहब्बत है इससे ज़्यादा मुझे तुझसे मोहब्बत हो। इसका क्राइटेरियन क्या है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की नहीं मानेंगे, जिसमें अल्लाह नाराज़ हो उसमें शौहर तो छोड़ दीजिए, माँ बाप की नहीं मान सकते, बीवी तो छोड़ दीजिए, आप बाप की बात नहीं मान सकते, तो ये दुआएं अपनी दुआओं में शामिल करें। इसी तरह अल्लाह के नबी एक बड़ी प्यारी दुआ मांगते थे, आपको ये मसनून दुआ में भी मिलेगी, नमाज की दुआ में भी मिलेगी, कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जत नजरी इला वजहिका, अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करता हूँ, व शौक इला लिकाइका, और तेरी मुलाकात का शौक मांगती हूँ। सच बताएं कब आखिरी बार हमने अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगी? रोते ही रहते हैं, शोहर प्यार नहीं करते, शादी से पहले और ही बड़े गम होते हैं, फलां लड़का मुझसे नहीं करता और फलां कजन मुझे तरफ नहीं देखता, और शादी हो जाए तो फिर कुछ और। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत दे दे, यकीन करें जैसे फीकी चाय नहीं पी जाती ना, चीनी डालेंगे तो चाय मीठी होगी ना, इस तरह अल्लाह की मोहब्बत आपकी जिंदगी को मीठा कर देगी, आपकी जुबान में मिठास ही तब आती है जब आपको अल्लाह से मोहब्बत होती है। अब इमेजिन करें अल्लाह ने सब के लिए खुला मैदान रखा, ये भी नहीं कि बाउंडेड है, अल्लाह का ये मुकाम है, अब दरबारियों का, वजीरों का, मशीरों का, आवाम लोग बाहर बैठे हैं, अल्लाह कहते हैं एक अदना बंदा आए मेरे साथ बात करे रात को, हल में मुस्तगफर, आओ मैं पुकारे सुनता हूँ तुम्हारी, लेकिन लोग नजर आने वाली छोटी छोटी चीजों में रहते हैं। अब अगली आयत को बड़े दुख से सुनिए, मैं तो इसको पढ़ती हूँ ना तो मेरे अंदर ऐसे लगता है कि आंसू गिर रहे हैं, और मेरे जहन में कुरान की वो आयत आती है जो 3 दफा आती है कि वमा कदरुल्लाह हक का कदर, है खूबसूरत लेकिन छुपा हुआ है। छुपा होने का मतलब ये तो नहीं कि चीज है ही नहीं, तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह के सिवा गैरों के पीछे पड़ जाते हैं, किसी ने किसी को करनी वाला बना दिया, किसी को दाता बना दिया, जरूरत पड़ी तो एक कब्र में, दूसरी पे पहुंचे, तीसरी पे, होगा क्या कयामत के दिन? ये आयत बहुत गौर से देखने की, और आप अगर इस पे जमायर नहीं लिखेंगे तो कल तर्जमा सुनाते वक्त गलती होगी, क्योंकि इसमें फर्क है थोड़ा सा लफ्जों का, इसलिए जहां बोलूं साथ साथ लिख लीजिएगा। इस तबर अल्लज़ीन तुबियो, रोजे कयामत हाल ये होगा कि जब वो लोग बेजार हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की, पहला इन तूबी हुए ना उसके ऊपर नीचे लिखिए, चले मैं ऐसा करती हूँ ना, ये तूबी ताबी को 2 लफ्ज़ रख लेते हैं, बड़े आम आसान याद रखने में, सिर्फ समझाने के लिए, पीर और मुरीद, इसका फर्क समझते हैं? पीर कौन होता है? जिसकी तरफ लोग जाते हैं, यानी लीडर कह लें, और मुरीद इरादे से, इरादा या उर्दू आपको लिखाया भी था, मुरीद वो है जो किसी की तरफ इरादा करे, तो मैं यहाँ सिर्फ ये लफ्ज़ लिखाने के लिए ताकि आपको तर्जमा समझ आ जाए। इस तबरुल्लज़ीन तुबियो मिनल्लज़ीन तबाउ, जब बेजार हो जाएंगे मुरीद पीरों से, अल्लज़ीन तबाउ क्या है, जिनकी तरफ वो गए, वराउल अज़ाब और वो अज़ाब को देखेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब और उनके आपस के सब रिश्ते नाते कट जाएंगे। कौन से हैं लिखिए? वो पीरी मुरीदी का रिश्ता या मुश्किल कुशाई का रिश्ता। अमूमन लोग जिन बुजुर्गों के पीछे जाते हैं उनके बारे में कुछ गुमान कर लेते हैं कि कल कयामत के दिन ये हमारे काम आएंगे, हम जब किसी मुश्किल में फंस जाएंगे तो ये उस वक्त हमारी मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कट डाउन, वो सब रिश्ते नाते कट जाएंगे। तस्वुर में आ रहा है कुछ? कुछ लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुछ ऐसे बुजुर्गों के लिए जो हकीकत में नेक थे, देखिए जिन लोगों को लोग पीर बनाते हैं ना वो 2 किस्म के होते हैं, या जिनकी पैरवी करते हैं, एक वो होते हैं कि जिनकी अपनी जिंदगियां तौहीद का नूर फैलाते हुए गुजरी, कभी आप उनके बारे में बुरा नहीं कह सकते, और आप आज के दौर में बरसगीर पाको हिंद में जितने भी मारूफ पीर हजरात देखेंगे ना, सिर्फ मिसाल देती हूँ, मेरा जाती को इतना इल्म नहीं है उन बारे में, लेकिन हल्का हल्का जो मैंने उनके बारे में पढ़ा और जाना, जैसे मिसाल है कि दाता हजवेरी के नाम पे एक बुजुर्ग लोगों ने उनको बहुत मानते हैं, इसी तरह अब्दुल कादर जिलानी, इसी तरह मुइनुद्दीन चिश्ती, सिर्फ इन 3 की बात करते हैं, ये तीनों अपने दौर के मवाहिद थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे, इलाहम वाहिद, सारी जिंदगी लोगों को दीन की बात सिखाते रहे। अब हुआ क्या कि जब ये लोगों को अल्लाह की बात सिखाते थे तो लोगों को इन पे प्यार आता होगा ना, ये ऐसे ही जैसे हमें अपने उस्तादों से मोहब्बत नहीं हो जाती, क्यों होती है? कि ये हमें अल्लाह से जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जब ये जिंदगी में अल्लाह की बातें करते थे तो उस दौर के जो लोग थे उनको इनसे मोहब्बत हो जाती थी, कि भाई इनकी वजह से अल्लाह मिला, ठीक है कोई हरज की बात नहीं थी, अगर वो वहीं पर रुक जाती। वक्त के साथ साथ इन बुजुर्गों का इंतकाल हुआ, अब जब इंतकाल हुआ ना वहां से एग्जैजुरेशन शुरू हुई, अल्लाह का हुक्म क्या है कि मुसलमान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए, अकेली कब्र इस्लाम में पसंदीदा नहीं है क्योंकि वो नुमाया हो जाएगी और उससे फिर बाद में शिर्क का शायबा होता है, یہاں سے ان کے جو مرید یا ان کے شاگرد جو تھے ان سے غلطی ہوئی، محبت کے ناطے سے اور بعد میں بھی ان کی قبروں پہ آنے کے نام سے انہوں نے ان کی قبریں الگ سے بنا دی، کوئی نیت نہیں تھی اس وقت خراب، بس یہ تھا کہ ان کی قبر ذرا نمایاں بناتے ہیں، ان کی تو اتنی قربانی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ جب وہاں بنا دی، شروع میں لوگ یہی کام کرتے رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ شروع کے دور کے لوگوں نے جو چیز محبت میں کی اور ان کے علم سے فیض پھیلاتے کہ آگے بات پھیلتی رہی، دو تین نسلوں کے بعد ہوا کیا کہ وہ جو ان کے علم سے فیض لینے والے لوگ تھے وہ بھی ادھر ادھر بکھر گئے اور ان کا علم کا سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ تو جو آنے والی نسلیں تھیں انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ اکیلی قبر ہے، کافی سال سے ادھر ہے، کافی لوگ ادھر آتے ہیں دعا مانگنے، یقیناً جو کرنی والے ہوں گے انہوں نے بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگے آ کے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ کل کے سبق میں تھے نا اصاف اور نائلہ، جو وہاں معاملہ ہوا وہی ادھر ہوا، اب ہوا کیا کہ ان سے شرک شروع ہو گیا۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو حق والے تھے، اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ آج کرسچن جو ہے وہ ان کو خدا مانتے ہیں لیکن وہ خدا نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں آپ پڑھیں گے۔ ایک دوسری قسم کے بزرگ ہوتے ہیں، یہ بڑے غور کی بات ہے، جو اپنی زندگی میں خود اپنی گدیاں پکی کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتے ہیں، اور اگر لوگ ان کے آگے جھکے تو وہ ان کو نہیں روکتے۔ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، یہ دوسرا ہے۔ یہ جو پہلا معاملہ یہ آگے آئے گا، ایک صورت میں اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے پلیز جہاں یہ آیتیں سنتے وقت آپ کسی نیک بزرگ کو نہ سوچئے گا، نہ آپ کسی بھی قبر والے یا جن کے بارے میں لوگ معروف باتیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ ہوتے ہیں اس قسم کے جنہوں نے اپنی دکانداری بنائی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو جھوٹی امیدیں لگاتے تھے کہ تم آ جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ وہ قیامت کے دن وہ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ہوگا کیا؟ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی یعنی مرید، لو ان لنا کروتن، کاش اگر ہوتا ہمارے لیے پھر کر جانا۔ یعنی اب ان کی افسوس کو محسوس کیجئے، یہ ایسے جیسے ہم میں سے کوئی کہے کہ کاش میں پھر 12 سال کا ہو جاؤں اور نئے سرے سے قرآن سیکھنا شروع کروں، اب تو پڑھا نہیں جاتا، لکھا نہیں جاتا۔ یعنی حسرت، ناممکن بات سوچیں گے۔ فنتبرأ منہم، تو ہم بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرأوا منا، جیسے آج یہ بیزار ہوئے ہم سے۔ آپ اس کو اگر امیجینیٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں، کیونکہ میرا گمان ہے کہ الحمدللہ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ میں سے نہ کبھی کسی نے کسی قبر پہ جا کے کچھ مانگا نہ دیکھا۔ لیکن آپ صرف ایک عام سی مثال ہے کہ بالفرض آپ پاکستان سے لندن آنے والے تھے، شاپنگ کی تو کچھ زیادہ ہی کر لی، ہوتا ہی ہے نا، اور پاکستان جا کے تو لوگ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ ویسے پاکستان جاتے ہیں تو لگتا ہے سب کچھ پاکستان میں ملتا ہے، لندن میں کچھ نہیں ملتا۔ جب لندن میں آتے تو ایسے لگتا ہے سب کچھ لندن میں ملتا ہے، پاکستان میں کچھ نہیں ملتا، اور آتے جاتے ہم سامان اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ خیر سامان زیادہ ہوا، کسی ملنے ملانے والے نے کہہ دیا فکر ہی نہ کرو جی، وہ ایئرپورٹ پہ ہمارا بندہ ہے، وہ آپ کا سامان نکلوا دے گا۔ سنی ہوں گی نا باتیں۔ اب آپ سوچیں کہ 30 کلو کی بجائے اگر آپ کسی جاننے والے کی امید پہ وہاں 130 کلو لے جائیں، تو سب سے زیادہ آپ کو ایئرپورٹ پہ آپ کس کو ڈھونڈیں گے؟ وہ صاحب کدھر ہے؟ اب آپ سوچئے کہ پہلی بات ہے وہ صاحب ہوں ہی نہ، چلیں یہ بھی شکر ہے وہ بچ گئے، دوسری بات ہے وہ موجود ہیں کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے، جی ہیں جی وہی ہیں، یہی نام ہے جی، یہی ہے وہی ہے۔ تو آپ کہیں جی وہ مجھے فلاں نے کہا تھا، آپ وہ کہیں گے کدھر ہو، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اب آپ بتائیے اس وقت کیا ہوگا؟ یہ تو ایک چھوٹا سا مثال ہے نا، چھوڑ دیں گے سامان، پیسے دے کے لے جائیں گے، پیسے ہی ہے نا۔ لیکن آپ سوچئے جن لوگوں کے پاس زندگی بھر کے بٹا رہے تھے، کسی کی آس پہ گناہ کرنا چھوٹی بات ہے، چلو میں کر لوں تم بچا لینا، تم یہ کر لو میں بچا لوں گا، قیامت کے دن پھر وہ کہیں گے کاش اللہ ایک بار واپس آنے کا موقع دے، فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا، ہم ان سے ایسے بیزار ہو جائے جیسے یہ آج ہم سے ہوئے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، ان پر حسرتیں بنا کر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے یہ تو بیچارے بھولے تھے، نہیں یہ جاہل تھے، انہوں نے جانتے بوجھتے جاہل رہنا پسند کیا، ان کو یہ پسند نہ آیا کہ ہم اللہ کی بات مانیں، ساری امیدیں سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے اور اس وقت وہ افسوس کریں گے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اس موقع پہ مجھے بات یاد آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک کافر ان کو ملتا، کہتا ہے کہ تم مسلمان کتنے نا سمجھو، نہ نظر آنے والی جنت کے لیے اپنی اس دنیا کو ویران کرتے ہو، کوئی فانی نہیں تمہاری زندگی میں، ये भी नहीं, ये गुना, ये सवाब, ये वो, जो भी उसने कहा होगा, मैं आपको अपने लफ्जों में बता रही हूँ। अब हम होते हैं ना, तो या तो लड़ लुड़ के आ जाते, या रोने लग जाते, या शक में पड़ जाते अपने दीन पे। हजरत अली ने ऐसा नहीं किया, उनको शक नहीं हुआ, क्योंकि उनके दिल जमे हुए थे। कहने लगे, मेरे भाई बात सुनो, पहली बात जो तुमने कहा है कि कोई आखिरत नहीं, कुछ नहीं, मौज मस्ती कर लो, और मेरा अकीदा उससे उलट है, बिलफर्ज तुम्हारी बात सच हो गई कि नहीं आई कयामत, तो मेरा क्या बिगड़ा, ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ा। नेकी करते हैं, कुछ सुकून भी मिल जाता है, कोई सदका खैरात देते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो किसी गरीब की मदद हो जाती है, मेरा क्या बिगड़ा। लेकिन तुम बताओ, अगर मेरा अकीदा ठीक हुआ तो कल तुम्हारे साथ क्या बनेगा। इतनी पुरअसर बात थी कि उस शख्स का दिल हिला और वो मुसलमान हो गया। अब आप सोचिए कि ये कुरान का सिर्फ दूसरे पारे का आगाज है, और आज उम्मते मुस्लिमा के घरों में कितने कुरान हैं। जब हम ये आयतें पढ़ते हैं ना, तो फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि जब ये सब कुछ मौजूद है, तो फिर उम्मते मुस्लिमा में शिर्क है कि नहीं। कभी आपने शिर्क देखा कि नहीं देखा? आपको सिर्फ इस सोच के साथ हम सबको भी माफ करे, एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ कि आज पढ़े लिखे दौर में मुसलमानों में भी क्या कुछ हो रहा है, और अल्लाह ताला की ये बातें कितनी सच हैं। और मैंने और आपने इन क्लिप्स को देखते वक्त ये सोच के देखना है कि मेरा इसमें क्या किरदार है। अगर मैं किताब पढ़ी हुई हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, ये किताब की आयत मेरे सामने, कोई पहली दफा थोड़ी आपने पढ़ी है। कई लोगों को तो मैं खुद जानती हूँ, पिछले 4-6 साल से दौरे कुरान में कम से कम आप पढ़ते आ रहे हैं, और कुरान भी माशाल्लाह आप लोगों ने सब पढ़ते हैं। हम में से कोई मुसलमान ये नहीं है कि जिसको ये पता ही ना हो कि शिर्क क्या होता है और बिदत क्या होती है। लेकिन आखिर इतना क्यों जहालत है, ये थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये देखिए, सजदा किया जा रहा है कब्र को। चादर चढ़ाई जा रही है। अल्लाह क्या इस कुरान के पैगाम को आम करने की जरूरत नहीं है? पूरे कुरान का बुनियादी मजमून ही तौहीद है, बाकी चीज़ें तो बाहर की हैं, साइड की हैं। और अगर अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको इस जगह के लिए, इस कुरान के लिए चुनता है, तो क्या हमें इस पे रोज़ 2 नफिल नहीं पढ़ने चाहिए? और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने ये शऊर दे दिया है। आप अकेले ही नहीं इधर पढ़ रहे, बहुत सारे लोग अब जाग उठे हैं। काम ये करना है कि हमने लोगों को अल्लाह से जोड़ना है। दुआ करें बस कि अल्लाह ताला हमारे दिल खोल दें। जहालत दूर करने के लिए करना क्या है, एक चिराग जला दें। कितने अंधेरों का शिकवा करते रहे, क्या फायदा, जब तक कि आप चिराग नहीं जलाएंगे।